यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभागिरिवरधारी जय गोपी जन जय यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरावन जारी यमुना तीरा यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jai Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jai Radha Jai 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 Jagannath Jagannath Baladev Subhadra Jai Jai Jagannath Jagannath Jai Gauranitai Jai Gauranitai Gauranitai Jai Gauranitai Jai Gauranitai Jai 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 Prabhupad 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 Jai Jai Prabhupad हरिनाम संकीर्तन की श्री प्रभुपाद की निताय गौर हरि प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नारायणं नमस्कृत्यं ततोर्जयमुदीरये नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततोर्जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भगतीर्भवतीर्नयष्ठके श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय तीन और श्लोक संख्या पांच। मनास्यासन प्रसन्नानि साधु नाम सुरद्रिहां जायमाने जने तस्मिन् ने दुर्दुन्दुभयसमम् मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधु नाम सुरद्रुहाम् जायमाने जने तस्मिन् ने दुर्दुन्दुभयसमम् मानां स्यासन् प्रसन्नानि साधु नाम सुरद्रिहाम् जायमानो ने जने तस्मिन् ने दुर्दुन्दुभयसमम् मनस्यासन् प्रसन्नानि साधु नाम सुरद्रुहम् जायमाने जने तस्मिन् ने दुर्दुन्दुभयसमम् मानां स्यासन् प्रसन्नानि साधूनां सुरद्रुहाम् जायमाने जने तस्मिन् ने दुर्दुन्दुभयसमम् प्रसन्नानि साधु नाम सुरद्रुहम् माता है। ठीक है। मनासि ब्राह्मणों के मन जो कंस से भयभीत थे आसन हो गए प्रसन्नानी पूर्ण तुष्ट तथा उत्पत्ति उत्पात से रहित साधुनाम ब्राह्मणों के जो सब के सब वैष्णव भक्त थे असुरद्रुहाम जो धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते समय कंस तथा अन्य असुरों द्वारा सताए गए थे जायमाने जन्म होने से अजन्मे भगवान विष्णु के तस्मिन उस्थान नेदु बज उठी दुंदुभयः दुंदुभिया समम एक साथ ऊपरी लोकों से। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की वैसे तो प्रभुपाद जी ने इस पांच लोकों का एक साथ ही अनुवाद और तात्पर्य दिया है, तो हम अनुवाद भी पढ़ेंगे पांचों श्लोकों का। तत्पश्चात भगवान के आविर्भाव के शुभ समय सारा ब्रह्मांड सतोगुण सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए। सूर्य चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत थे। सारी दिशाएं अत्यंत सुहावनी लगने लगी और आनंद पूर्ण नक्षत्र निरभ्र आकाश में टिल मिलाने लगे। नगरों ग्रामों खानों तथा चरागाहों से अलंकृत पृथ्वी सर्व कल्याण प्रद प्रतीत होने लगी। निर्मल जल से युक्त नदियां प्रवाहित होने लगी और सरोवर तथा विशाल जलाशय कमलों तथा कुमुदिनियों से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। फूलों पत्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों और हरे पौधों में कोयलों जैसे पक्षी तथा भौरों के झुंड देवताओं के लिए मधुर ध्वनि में गुंजार करने लगे। निर्मल मंद वायु बहने लगी जिसका स्पर्श सुखद था और जो फूलों की गंध से युक्त थी। जब कर्मकांड में लगे ब्राह्मणों ने वैदिक नियम अनुसार अग्नि प्रज्वलित की तो अग्नि इस वायु से अविचलित रहती हुई स्थिर भाव से जलने लगी। इस तरह जब अजन्मा भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए तो कंस जैसे असुरों तथा उसके सेवकों द्वारा सताए गए साधुओं तथा ब्राह्मणों को अपने हृदयों के भीतर शांति प्रतीत होने लगी और उसी समय स्वर्ग में दुंदुभिया बज उठी। तात्पर्य भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरा जन्म तथा कर्म सभी दिव्य है, जो मुझे यथार्थ समझ लेता है वह तुरंत वैकुंठ जाने के योग्य बन जाता है। भगवान का जन्म सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं होता, जिसे अपने पूर्व कर्म के अनुसार भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान के प्राकृत्य की व्याख्या पिछले अध्याय में हो चुकी है। वे स्वेच्छा से ही प्रकट होते हैं। जब भगवान के प्राकृत्य का समय आ गया तो नक्षत्र शुभ हो गए। रोहिणी नक्षत्र का ज्योतिष फल भी प्रधान था क्योंकि यह नक्षत्र अत्यंत शुभ माना जाता है। रोहिणी ब्रह्मा के अधीन है और ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न है। रोहिणी अजन्मा विष्णु के जन्म के समय विष्णु से ही जन्म लेकर प्रकट होता है।
जो ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों की स्थिति के अतिरिक्त विभिन्न ग्रहों की विभिन्न स्थितियां के कारण शुभ तथा अशुभ क्षण होते हैं। कृष्ण जन्म के समय सारे ग्रहों का अपने आप ऐसा तालमेल बैठा कि सब कुछ शुभ बन गया। उस समय पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण सभी दिशाओं में शांति तथा संपन्नता का वातावरण था। आकाश में शुभ नक्षत्र दिख रहे थे और पृथ्वी पर सारे नगरों, सारे ग्रामों या चरागाहों में तथा हर प्राणी के मन के भीतर सौभाग्य के लक्षण प्रकट हो रहे थे। नदियां जल से पूर्ण थी और सरोवर सुंदर कमलों से सुशोभित थे। जंगल सुंदर पक्षियों तथा मोरों से पूर्ण थे। जंगल के सारे पक्षी मधुर ध्वनि से गाने लगे और मोरनियों के साथ नाचने लगे। सुखद मंद वायु विभिन्न फूलों की गंध लेकर प्रवाहित होने लगी, जिसका स्पर्श अत्यंत सुखद था। अग्नि यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए अपने घर अत्यंत सुखद प्रतीत होने लगे। आसुरी राजाओं के उत्पातों के कारण ब्राह्मणों के घरों की यज्ञ अग्नि प्राय बुझ चुकी थी, किंतु वही जब अब पुनः शांतिपूर्ण जलने लगी। यज्ञों पर पाबंदी लगाए जाने से ब्राह्मण मन बुद्धि तथा कर्म से अत्यंत संतप्त थे, किंतु कृष्ण के आविर्भाव के समय उनके मन स्वतः प्रसन्नता से भर उठे, क्योंकि आकाश में भगवान के प्राकट्य को घोषित करने वाली दिव्य ध्वनि जोर से सुनाई पड़ने लगी थी। कृष्ण जन्म के अवसर पर समस्त ब्रह्मांड में ऋतु परिवर्तन हो गया। यद्यपि कृष्ण सितंबर भादो मास में उन्नत हुए थे, किंतु ऐसा लग रहा था मानो वसंत हो। वायुमंडल शीतल था और नदियां तथा जलाशय ऐसे लग रहे थे मानो शरद ऋतु हो। कमल तथा कुमुदिनियां दिन में खिलती हैं, किंतु आधी रात में भी जब कृष्ण उत्पन्न हुए तो वे खिली थी और सुगंधित वायु बह रही थी। कंस के उत्पातों के कारण सारे वैदिक कर्मकांड बंद हो चुके थे। ब्राह्मण तथा साधुगण शांत चित्त होकर वैदिक अनुष्ठान नहीं कर पा रहे थे, किंतु अब वे ही ब्राह्मण बिना उत्पात के दैनिक अनुष्ठान करके अत्यंत प्रसन्न थे। असुरों का कार्य है सुरों भक्तों तथा ब्राह्मणों को सताना, किंतु कृष्ण के आविर्भाव के समय ये भक्त तथा ब्राह्मण व्यवधान रहित थे। श्री प्रभुपाद की। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलिन्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि शिगौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा भूतेर्महत पादयिमा पुरो विभो निर्मायक्षेतेर्यद् मोक्षपुरुषा भुङ्क्तेर्गुणान् षोडशषोडकात्मकं स्वलङ्कृतिष्ठं भगवान् वसांसि मे। जयतां सुरतों पङ्गुं मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज श्रीराधा मदनमो।
हरे कृष्णा। इस प्रातः श्रीमद् भागवत क्लास श्री श्री राधा गिरिधारी जी के प्रांगण में हम सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं। पधारे हुए आप सभी भक्तों का वैष्णव का स्वागत है। प्रस्तुत जो श्लोक है श्रीमद् भागवत का, भागवत जो है उनकी महिमा के बारे में बताया गया है। पुण्य श्रवण कीर्तन ह्यध्यन्त्यस्थि भद्राणि विदुनोति सुहत्सताम्। कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनना, उनका कीर्तन करना, इस संसार के सभी जीवों के लिए परम पुण्य कार्य है। और इससे क्या होता है, कहते हैं हृदय में जो अभद्र है, प्राय अभद्र होने के कारण ही जीव संसार में घूम रहा है। तो भगवान की कथा सुनने से हृदय में जो पाप है, जो अभद्र है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो प्राय जो भक्ति में आ रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं। लेकिन विशेष भक्तों के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि हृदय में जो वासना है उसको भी ये कथा नष्ट कर देती है ना। यद्यपि पाप तो अन्य कर्मों से भी, अन्य पुण्य कर्मों से भी कटते हैं, तप यज्ञ दान इससे भी पाप कटते हैं। ये प्रसंग परीक्षित महाराज ने जब नरक लोक का वर्णन सुना तब प्रश्न किया था, है ना। जब सुखदेव गोस्वामी ने नरक लोक का वर्णन किया कि पाप कर्म करने से इस प्रकार से जीव को यातना भुगतनी पड़ती है, तब परीक्षित महाराज ने पूछा तो फिर उपाय क्या है इसमें से मुक्त हो सके सभी जीव। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि व्यक्ति को चाहिए कि मृत्यु आ जाए उससे पहले पहले अपने पाप का प्रायश्चित करें। और ये प्रायश्चित के लिए अनेक अनेक साधन है, तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ यात्रा तीर्थवास करके गंगा यमुना जिसमें स्नान करना, और भी तपस्या करना, यज्ञ करना, इन सब से ब्रह्मचर्य, इन सब से पाप कष्ट नष्ट होता है। और तब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि इससे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, जैसे दावानल जंगल में जब आग लगती है तो बांस के झुलमुट जलकर भस्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश की मौसम आती है और बारिश आते ही जो जमीन में उनके जो मूल हैं वो फिर से अंकुरित हो जाते हैं, तो वैसे पाप तो अन्य साधनों से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो वासना भरी हुई है, भोग वासना, अनेक प्रकार की वासना हृदय में भरी हुई होती है, उसका शमन कैसे होगा? तो कहते हैं कि भागवत श्रवण करने से, भगवान की कथा सुनने से, भगवान का कीर्तन करने से ये जो वासना है वो भी नष्ट हो जाती है, उसको भी निकाल दिया जाता है। तो ये है भगवान की कथा। तो आज तो यहाँ पर एक साथ 5 श्लोक के लिए हमें कहा गया था और प्रसंग आप सब जानते हैं चल रहा है कि भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आ चुके हैं और अगले अध्याय में देवताओं के द्वारा बहुत सुंदर गर्भस्तुति हुई और उसके बाद ये तीसरे अध्याय में अब भगवान के आने का समय बहुत निकट आ गया है। और तब जहां पर भगवान आने वाले इस धरातल पर, वहां पर भगवान के आगमन से क्या क्या शुभ घटना हो रही है उसका वर्णन इन 5 श्लोकों में दिया गया है। यहां पर तो केवल 5वां है आपके सामने और समय भी बहुत कम बचा है। तो इस 5 श्लोक में प्रथम श्लोक है, अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभनः यर्हे वाजन जन्मक्षः शांतर अक्ष ग्रह तारकम्। सबसे पहला शब्द लगा रहे अथ सुखदेव गोस्वामी कि अथ ये सब घटना हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि भगवान का आगमन होने वाला है। तो भगवान का जब आगमन होता है और भगवान का जब अवतार होने वाला होता है तो ये सब घटना घटित होती है, ये सब घटना घटित होती है। क्या क्या घटित हो रहा है उसके बारे में बताया गया है कि सर्व गुणोपेतः काल परम शोभनम, समय बहुत सुंदर चल रहा है, सर्व गुणों से संपन्न। यर्हे वाजनम अक्ष शांतर ग्रह तारकम, और सभी ग्रह जो है वो शांत है। जैसे देखा जाता है हर एक व्यक्ति के जब जन्माक्षर निकाले जाते हैं तो उनके ग्रह नक्षत्र को देखा जाता है, तो कभी कभी कुंडली में कोई ग्रह ज्यादा है कोई कम है, तो जीव के जन्म में हो सकता है, लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं तो सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, क्योंकि ये सब जो ग्रह है वो ब्रह्मा के अधीन है और ब्रह्मा भगवान के अधीन है, अथवा तो ये काल के अधीन है। और भगवान स्वयं कहते हैं अहम कालोस्मि, मैं स्वयं काल हूं। तो सूर्य चंद्र इत्यादि सब ग्रह जो है वो अपने अनुकूल भाव में हो गए। दिशः प्रसे दुर्गगनम, सभी दिशाएं जो है वहां पर सभी लोगों का मंगल हो रहा है। और निर्मलो दुगणोदयम महि मंगल भूयिष्ठु पुर ग्राम व्रजा कर, नगर ग्राम और खाने और चरागाहों पृथ्वी, इससे पृथ्वी अलंकृत हो गई। मतलब जितनी भी खान थी वो सुंदर सुंदर रत्न उगलने लगी, नदियां समुद्र, और पृथ्वी जो थी उसमें सुंदर सुंदर घास पौधे निकलने लगे, और पृथ्वी भी बहुत मात्रा में अन्न इत्यादि पदार्थ देने लगी, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। तो वैसे तो भू जो है वो भगवान की ही पत्नी है, इसलिए वो आचार्यगण भाव देते हैं कि मन ही मन सोच रही है कि मेरे प्रभु आज इस धरातल पर मेरे पर चरण रखने वाले हैं, तो मैं अपने आप को पहले से ही अलंकृत कर दूं ताकि मेरे स्वामी प्रसन्न हो जाए। ये भाव है भक्तों का कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ किया जाता है। तो पृथ्वी अलंकृत हो गई नद्य प्रसन्न सलिला, और नदियां जो थी वो निर्मल जल बहने लगा। अब आगे कह रहे हैं कि ये समय कौन सा था, बोले भद्रपद, भगवान का जन्म तो था भद्रपद, लेकिन वातावरण कैसा था, वसंत ऋतु के जैसे। रूपा जी तात्पर्य में अंत में लिखते हैं कि वैसे देखा जाए तो भद्रपद में तो धूप बढ़ जाती है फिर, और तालाब जो है सूख जाते हैं, लेकिन भगवान का जन्म होने वाला था इसीलिए ये नदियां भी बहुत सुंदर और निर्मल जल था बह रहा था। और रदा जल रुहाश्रिय द्विजाली कुल सन्ना दस्ताव का वनराज यह, इस प्रकार से निर्मल वायु भी बह रहा था, जैसे जल निर्मल बह रहा था वैसे वायु भी निर्मल बह रहा था। और वायु के बारे में कहते हैं कि वायु मंद सुगंधित और शीतल बह रहा था। कैसा था वायु, निर्मल सुगंधित शीतल और मंद, उनकी गति मंद हो गई थी। तो आचार्यगण कहते हैं कि कैसे मंद हो गई थी, बोले वायु पवन जो है देवता वो भी भगवान के ही भक्त है सब, तो वो भी सोच रहे कि भगवान का जन्म होने वाला है तो मैं वहां जाऊं, तो वो अपनी गति से ही आ रहे थे, लेकिन बीच में जो भी नदियां थी समुद्र था, जो नदियां थी सरोवर थे, उन्होंने कहा कि आप तो जा सकते हो क्योंकि आप वायु हो, लेकिन हम यहां से नहीं जा पाएंगे, इसलिए कृपया करके हमारा जल लेकर जाइए। और जल को साथ में लेकर वायु बह रहा था इसलिए उसकी गति मंद हो गई। और दूसरा कहते हैं कि उसी बीच रास्ते में बहुत सारे जो बगीचे फूलों से भरे हुए थे, फूलों ने भी सोचा कि प्रभु का जन्म होने वाला है, आप जा रहे हैं हम तो नहीं जा पाएंगे, तो कृपया करके हमारी सुगंध को ले जाओ, तो वो भी अपनी सुगंध दिए, इसलिए वो वायु सुगंधित हो गया। तो इस प्रकार से इस वन में जितने भी फूल इत्यादि थे वो जा रहे थे, और सुख स्पर्श वायु जो बह रहा था वो सुख स्पर्श से सुख हो रहा था सभी जीवों को। और पुण्य गंध वह सुचि अग्रयश्च द्विजातीनाम शांतास्तत्र समिंधतः, और ब्राह्मणों के लिए यज्ञ में जो अग्नि है वो भी सुखद हो रही थी। और मानसायस्य मानसायस्य प्रसन्नानि साधुनाम सुयद्रिहाम जायमाने जने तस्मिन् नेदुर दुंदु भयसमम, अंतिम जो श्लोक है कहते हैं कि मानासी कहते हैं ब्राह्मणों के मन जो कंस के भय से विह्वल हो गए थे, दुखी हो गए थे, क्योंकि कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया था, क्योंकि आसुरी वृत्ति जब संसार में बढ़ती है तब धर्म का हास होने लगता है और वो कष्ट देने लगते हैं धर्म करने वाले लोगों को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को। और अब उस अधर्मियों का नाश करने के लिए भगवान जब प्रकट होने वाले हैं, तब उस ब्राह्मणों के मन जो है वो प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्न नानी पूर्ण तुष्ट तथा उत्पात से रहित हो गए। ये होता है भगवान के आने से भक्तों के मन प्रसन्न होते हैं और दुष्ट जो होते हैं उसको पसंद नहीं आता है। तो भगवान का अवतार होने वाला है, ब्राह्मण वैष्णव सब प्रसन्न होते हैं भगवान को पा करके, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, भक्ति है। और अब भगवान आएंगे तो अधर्म का नाश करेंगे, क्योंकि भगवान ने गीता में वचन दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। और भी भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाचाय सदिष्कृताम धर्म संस्थानापर्थाय संभवामि युगे युगे। तो भक्तों के मन प्रसन्न हो रहे हैं, ब्राह्मणों के मन प्रसन्न हो रहे हैं। प्रसन्नानि तुष्ट पूर्ण उत्पाद से रहित साधुनाम। और अब जब भगवान आने का समय उपस्थित हो गया है, तब ब्राह्मण इन दुष्ट के व्यवधान से रहित होकर अपने यज्ञों को संपन्न कर रहे हैं, अपना भजन भक्ति ठीक से कर रहे हैं, क्योंकि वो सब जो है वैष्णव या ब्राह्मण थे। क्यों ये सब हो रहा है? तो कहे जायमाने अजने, क्योंकि अजन्म भगवान का जन्म हो रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि भगवान अजन्म है, जिनका कभी जन्म नहीं होता है, क्योंकि अब इनका अंश जो आत्मा है उनके बारे में भी गीता में कहा गया है कि वो भी न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। तो फिर भगवान का तो जन्म मरण का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन ऐसे भगवान भी जन्म धारण कर रहे हैं, भगवान अवतार ले रहे हैं। क्यों लेते हैं भगवान अवतार? भूतानाम क्षेमाय भवाय च अवताराणी। भगवान के जो अवतार हैं वो सभी भूतों के लिए क्षेमाय च भवाय च, सभी के क्षेम के लिए होता है। इस बात को भागवत के सप्तम स्कंद में युधिष्ठिर महाराज के द्वारा नारद मुनि को प्रश्न किया गया, जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया और शिशुपाल की जो आत्मा थी भगवान में विलीन हो गई, तब प्रश्न किया गया कि ये कौन थे और ऐसा कैसे हो गया, कैसे संभव हुआ। तब नारद मुनि ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि वास्तव में इन्होंने भले द्वेष से भजन किया था, द्वेष से याद किया था भगवान को, लेकिन फिर भी भगवान को पा गए। तो नारद मुनि वहां पर कहते हैं कि तुम संशय मत करो, क्योंकि भगवान जब इस संसार में अवतार धारण करते हैं तब उनका एक प्रयोजन ये होता है। वैसे तो बहुत सारे प्रयोजन है, लेकिन एक प्रयोजन ये होता है कि मैं जब इस धरातल पर जाऊंगा तो यहाँ के जो जीव है जिनके अंदर अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, किसी में काम है, किसी में क्रोध है, किसी में द्वेष है, तो किसी में स्नेह है, किसी में भक्ति है, तो मैं जाऊंगा तो ये जीव किसी न किसी प्रकार से यदि मेरे संपर्क में आ जाएंगे तो उनका उद्धार निश्चित होगा। इसीलिए भगवान जन्म लेते हैं, इसीलिए कहते हैं कामात भयात कंस, कामात गोपी भयात कंस द्वेषाद शिशुपाल आदि। काम से गोपियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया, भयात कंस और कंस ने भय से भगवान को प्राप्त किया। और वास्तव में भक्तों, भय में जो भक्ति होती है वो सुख में नहीं होती है ना। भय में भगवान का स्मरण जितना होता है उतना निर्भयता में नहीं होता है। अब कंस को जब ये भगवान आने का समय उपस्थित हो गया तो उनको भय होने लगा, और वो जहां भी देखता था उनको विष्णु दिखाई देते थे। भोजन करने बैठता था तो थाली में भी विष्णु दिखाई देते थे, सोने जाता था तो वहां भी विष्णु दिखाई देते, दीवार में भी विष्णु दिखाई देते, क्योंकि भय इतना मजबूत है। और ये रियल है, जब भय आता है तो भजन भी हमारा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो भयात कंस, कंस ने भय से प्राप्त किया, और शिशुपाल ने भगवान से द्वेष किया, और द्वेष भावना में भी भगवान का नाम लिया, और उससे उस शिशुपाल भी भगवान को प्राप्त किया। युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि उत्तर दे रहे हैं और आगे कहते हैं कि आप जैसे लोग हैं युधिष्ठिर जी, आप लोगों ने भगवान से स्नेह किया इसलिए आप भगवान को प्राप्त कर गए, कर जी। और हम जैसे लोग भगवान की भक्ति करते हैं, नारद मुनि कहते हैं, इसलिए हम भी भगवान को प्राप्त करते हैं। तो भगवान अजन्म है, लेकिन जन्म क्यों लेते हैं, अवतार क्यों धारण करते हैं, जगत के कल्याण के लिए। तो जो ब्राह्मण और वैष्णव भक्त हैं, ये सोचकर प्रसन्न हो रहे हैं कि अब भगवान अवतार ले रहे हैं तो निश्चित जगत का कल्याण होगा, हमारा तो होगा ही होगा, लेकिन सभी जीवों का कल्याण होगा, और उस समय जो है उनका तो होगा, लेकिन भगवान जब अवतार लेकर के अनेक प्रकार के लीलाएं करेंगे, और बाद में भले वो अपने धराधाम, इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम चले जाए, लेकिन उसके बाद भी आने वाले लोग युग युगांतर तक इन लीलाओं को गान करके भगवान को प्राप्त कर जाएंगे, क्योंकि भगवान के इन लीला चरित्रों में इतना बल है कि इनको सुनने मात्र से जीव भगवान से प्रेम को प्राप्त करके भगवत धाम को प्राप्त कर जाता है। और यही सबसे बड़ा उदाहरण है श्री परीक्षित महाराज। तो अजने जन्मे, अजने जो अजन्म है उसके जाय माने, उसके जन्म लेने से उस स्थान में दुंदुभी बज उठी। जब भगवान अजन्म है, वो जन्म लेने वाले हैं, तो नगारे और दुंदुभी बजने लगे आकाश में, देवता बजाने लगे, क्योंकि वो भी प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारा भी कार्य पूर्ण होगा, है ना। क्योंकि जब जन्म धारण कराना था, बुलाना था भगवान को, तब वही देवता पृथ्वी के बाहर से पाप से पीड़ित होकर के भगवान के सामने प्रार्थना करने के लिए ब्रह्मा जी और शिव जी के सहित गए थे। तो इसलिए देवता भी प्रसन्न है कि अब भगवान के आने का समय आ गया है। तो देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन असुर भयभीत होते हैं, जैसे कंस भयभीत होने लगा। तो इस प्रकार से दुंदुभिया बजने लगी। इसे और भी एक बात मिलती है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो ये सारी जो चीजें हैं होने लगती हैं। तो इस संसार में भी प्राय कई बार लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, भगवान का अवतार मानते हैं, तो यहां पर स्पष्ट सिद्धांत है कि उनके जन्म के समय ये सब घटित हो रहा हो तो समझना चाहिए भगवान है, है ना। नहीं तो नहीं समझ सकते हम कि भगवान, उनके जन्म के समय ये सब घटित होना चाहिए, इसमें से एक भी चीज घटित नहीं होती है, लेकिन फिर भी अपने आप को भगवान मानते हैं, वो मूर्खता में है और उनको मानने वाले भी मूर्खता में है। इसलिए हमें सावधान होकर इस स्पष्ट सिद्धांतों को भागवत से समझना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रमाण है भागवत। प्रमाण ममलम, चैतन्य महाप्रभु ने इसे कहा है, इसी को प्रमाण मानना चाहिए और समझना चाहिए कि भगवान मात्र कृष्ण है, राम है, क्योंकि जिनके अवतार के समय आप देखिए, राम कृष्ण इनके अवतार के समय ये सब घटनाएं घटित हो रही है। और इसीलिए तो गोपियां भी अपने एक श्लोक में कह रहे हैं कि आपके जन्म से,
जयति तेधिकं जन्मना व्रज,
जयति तेधिकं जन्मना व्रज, आपके जन्म से ये व्रज जो है स्वयत इंद्रिया इंद्रिय इंदिरा शश्वत अत्र है। जब से आपका जन्म व्रज में होने वाला था और जन्म हुआ है उसी समय से शश्वत निरंतर लक्ष्मी जो है यहां पर वास करने लगी है, हे प्रभु, और पूरा व्रज सुख से भर गया है। लेकिन गोपियां वहां पर कहती है कि व्रज तो भर गया है सुख से, लेकिन इस समय आप हमारे सामने उपस्थित नहीं होने के कारण हम एकमात्र दुखी हैं, दुखी हैं, इसलिए आप कृपा करके आ जाइए। तो भगवान जहां पर होते हैं, भगवान का नाम जहां पर आता है, भगवान की कथा जहां पर होती है, वहां भगवान का ही स्वरूप है सब, भगवान ही वहां पर उपस्थित होते हैं। और जहां पर भगवान होते हैं वहां पर ये सारी चीज सुखमय स्थिति बन जाती है। इसलिए भक्ति करना यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। भगवान का नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम यही सर्वश्रेष्ठ पुण्य कार्य है। और यदि इसको हम करते हैं तो भगवान की सन्निधि हम निरंतर प्राप्त कर सकते हैं, निरंतर भगवान का अनुभव जीवन में कर सकते हैं। और जब जीवन में भगवान है, कृष्ण है, उनका नाम है, तब वहां पर क्या कमी रह जाएगी। यदि मान लो समाज में भौतिक इच्छा है, भी है बहुत सारी, सुख चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, तो यहां पर देखा गया है कि लक्ष्मी जी स्वास्थ्यवत व्रज में रह रही है क्योंकि वो नारायण की पत्नी है, उनकी सेविका। तो जहां नारायण है वहां पर लक्ष्मी अर्थात बहुत कुछ, शुभ या धन, यश, कीर्ति, जो कुछ भी है वहां पर उपस्थित है ना। गीता के अंतिम सार रूप में देते हुए संजय ने भी कहा है ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धय, जहां पर भगवान कृष्ण है उनके भक्त हैं, है? और भगवान के कीर्तन भजन भक्ति हो रही हैं, तो तत्र श्री विजय ध्रुति ध्रुवा मतिर मम, सब कुछ वहीं पर है। तो इसी से हम सबको चाहिए कि इस नित्य भागवत सेवया, यहां पर तो हम प्रतिदिन सुनते हैं लेकिन इसके साथ साथ प्रयास होना चाहिए कि हमारे घर पे भी प्रतिदिन भागवत का पाठ किया जाए, भागवत को पढ़ा जाए, सुना जाए, कीर्तन किया जाए, क्योंकि भगवान के यही जो है सबके लिए परम का मंगलकारी है। तो हो सकता है एक चीज में मन न लगे, हो सकता है निरंतर भागवत में मन न लगे। तो कहा गया है प्रारंभ में, भागवत के प्रारंभ में भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात, इसीलिए हे राजा परीक्षित क्या करना चाहिए, बोले कभी भगवान की कथा सुननी चाहिए, कभी बोलनी चाहिए, कभी कीर्तन करे, कभी अर्चन करे, कभी पूजा करे, कभी ध्यान करे, कभी चिंतन करे, जो सुना गया है उसी के अनुसार चिंतन करना, कीर्तन करना, ध्यान करना, ये सब क्रमशः होते रहना चाहिए। इसी से भगवान की सन्निधि हमें निरंतर प्राप्त होगी, भगवान का अनुभव होगा और इसी आनंद में जीवन निर्वाह होगा, जीवन का समय होगा, जैसे हमारे गोस्वामियां गोस्वामी करते थे, है ना, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो प्रेमामृतांबो निधि, उसका सारा समय इसमें बीतता था, नाम गान नर्तन। तो ये हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इस भगवान के नाम और भगवान को विशेष करके हमारे हृदय में आविर्भाव कराएं। भगवान को बाहर से तो हम जन्म मनाते हैं लेकिन साथ ही साथ हमें हमारे हृदय में जन्म कराना है उसका। और जब हृदय में जन्म होगा तो मन प्रसन्न होगा अनुभव से, आत्मा भी प्रसन्न होगी। ये सब बातें भागवत में बताई गई हैं। तो यही सार है कि भगवान की भक्ति करना, भगवान का नाम लेना और भगवान की कथा सुनना। हरे कृष्णा यहीं पर भागवत को विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।